मानव कुछ खोया खोया सा लग रहा था, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अनीता जी के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। मनु, क्या हुआ बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है। आई, जो भी हुआ उसमें नित्या के साथ मैंने जाने अनजाने बहुत गलत किया है। आज जब वो यहाँ से जा रही थी तो मैंने उसकी आंखों में डर देखा। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके दिल में डर बैठ गया है कि अगर वो चली गई तो कहीं मैं फिर से उसे छोड़कर कहीं चला ना जाऊं। तूने देखा ना, पहले से कितनी कमज़ोर हो गई है। उसके डैड कह रहे थे कि एक दिन ऐसा नहीं था जब वो मुझे याद करके रोई ना हो। मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है और अब मैं उसे खुश देखना चाहता हूं और उसकी खुशी मेरे साथ है। देखा था ना तूने, जब मैंने मजाक में कहा कि उससे शादी नहीं करूंगा तो कैसे रोने लगी थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो और नित्या यहां आ जाए। हमारे साथ रहेगी तो धीरे धीरे उसके दिल से ये डर भी निकल जाएगा। बात सही थी जिसने अनीता जी को भी सोच में डाल दिया। मैं कल उसके पापा से इस बारे में बात करूंगी। जब बच्चों की खुशी इसमें है और परिवार तैयार है तो शादी में देर क्यों करना। जो पहला मुहूर्त निकलेगा उसी में तुम दोनों का लगन करवाकर मैं अपनी बहू को घर ले आऊंगी। मानव ने सर हिलाया और कुछ देर बैठकर कल के बारे में बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चले गए। नित्या उदास से मुंह लटकाए बैठी थी। मानव के सामने जो मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी, अब तो उसका कहीं नामोनिशान तक नहीं था। मैडम, हम घर पहुंच गए, ड्राइवर की आवाज कानों में पड़ी। तब जाकर नित्या को रियलाइज हुआ कि वो घर पहुंच गई है। उसने विंडो से बाहर देखा, सामने ही उसके घर का गेट था, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी थी और ना ही एक्साइटमेंट। नित्या बुझे मन से कार से उतरी और मायूसी से मुंह लटकाए घर के अंदर जाने लगी। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। अब तक उसने सर उठाकर आसपास देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी। क्या हुआ तुम्हें, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मिस्टर शेरगिल की भारी आवाज नित्या के कानों में पड़ी और ठिठक कर रुक गई। उसने चौंकते हुए सर उठाया तो सामने ही मिस्टर शेरगिल खड़े थे और इस वक्त उनके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे और नजरें नित्या के उदास चेहरे पर टिकी थीं। नित्या उन्हें अपने सामने देखकर स्तब्ध रह गई। कानों में मानव के शब्द गूंजे कि उसके डैड इंतजार कर रहे होंगे और मिस्टर शेरगिल का इस वक्त यहाँ होना इस बात का सबूत था कि वो सच में उसका इंतजार ही कर रहे थे, जिसकी नित्या को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हैरान थी। नित्या, जवाब दो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? मिस्टर शेरगिल ने सवाल दोहराया। तब जाकर नित्या होश में लौटी। उसने तुरंत अपनी उदासी छुपाई और होठों पर मुस्कुराहट सजा ली। नहीं तो, मैं तो खुश हूं। नित्या, मिस्टर शेरगिल ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। नित्या ने सर झुका लिया। वो मुस्कुराहट जो अभी उसने होठों पर सजाई थी अब वापस गायब होकर मायूसी में बदल चुकी थी। नित्या, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम मानव के साथ जाना चाहती थी तो मैंने नहीं रोका तुम्हें, फिर जब तुम वापस आई हो तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह उदासी क्यों दिख रही है? मिस्टर शेरगिल इस वक्त हद से ज्यादा सीरियस थे। नित्या अब भी सर झुकाए खड़ी थी। उसके होंठ फड़फड़ाए और धीमी सी आवाज आई। मेरा वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। मिस्टर शेरगिल को ये सुनकर झटका सा लगा। तुम्हारा अपने घर आने का दिल नहीं कर रहा था? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है कि मेरा अपने घर आने का दिल नहीं कर रहा था। नित्या ने तुरंत सर उठाकर उन्हें देखा। मिस्टर शेरगिल की आंखों में सवाल उभरा और भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। वो मैं इतने टाइम बाद आई और मानव से मिली थी, इसलिए मेरा उनसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। बोलते बोलते नित्या एक बार फिर मायूस हो गई और इस बार मिस्टर शेरगिल वो भी समझ गए जो उसने कहा और वो भी जो उसकी आंखें कह रही थीं, लेकिन लब कह ना सके थे। वो लंबे लंबे डग भरते हुए उसके सामने आ गए। नित्या ने मायूसी से सर झुका लिया। मिस्टर शेरगिल ने अपना स्नेह भरा हाथ उसके फर पर रख दिया। डरो मत, अगर मानव के साथ मेरी बेटी की खुशियां जुड़ी हैं तो अब उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो विधान शेरगिल का दामाद है। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने या तुमसे दूर करने की कोशिश भी की तो उसका सामना मुझसे होगा। मैं तुम्हारे मानव को कुछ नहीं होने दूंगा। और आई को भी, नित्या ने तुरंत सर उठाया और उम्मीद भरी भस्मासुर उन्हें देखने लगी। डैड, आई बहुत अच्छी हैं, उनके अलावा मानव का कोई भी नहीं है। अगर आई को कुछ हो गया तो मानव कभी खुश नहीं रह पाएगा। आप उनका भी ध्यान रखना। जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारे मानव और उसकी आई की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम चिंता मत करो, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर रेस्ट करो। नित्या का दिल डर से आजाद हो गया और चेहरे पर प्यासी सी मुस्कान बिखर गई। लव यू डैड, नित्या मिस्टर शेरगिल के गले से लग गई। पहले वो चौंके, फिर होंठ के किनारे हल्के से मुड़ गए। डैड लव्स यू टू माई स्वीटू। अब जाओ जाकर रेस्ट करो। मानव और उसकी आई की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं किसी को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मिस्टर शेरगिल ने प्यार से उसके गाल को थपथपाया। नित्या ने झट से सर हिलाया, मुस्कुराई और दौड़ती हुई वहां से जाने लगी, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचकर रुक गई, वापस पलटी। मिस्टर शेरगिल अब भी वहीं खड़े उसे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि क्या हुआ। डैड, मानव ने मुझे लेट नहीं करवाया। वो तो बहुत देर से मुझे चलने बोल रहा था, मुझे छोड़ने आने के लिए तैयार खड़ा था। मैं ही नखरे दिखा रही थी क्योंकि मेरा उन्हें छोड़कर आने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आप उसे कुछ मत कहना। मिस्टर शेरगिल के एक्सप्रेशन बदल गए और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। क्या मानव ने तुम्हें मुझसे ये सब कहने कहा है? नहीं हो, नित्या तपाक से बोली। नहीं, मानव ने मुझे ऐसा कुछ करने नहीं कहा। उसने तो मुझे समझाया था कि इस बारे में मैं आपसे कोई बात ना करूं। वो कल आएगा तो खुद बात कर लेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा मानव को मिले। आप पर उसका इंप्रेशन खराब हो, आप फिर से उससे गुस्सा हो जाएं, इसलिए मैंने खुद से आपको सच सच बता दिया कि मानव की वजह से मुझे आने में लेट नहीं हुआ। मैं ही नहीं आ रही थी, वो तो बहुत देर से मुझे आने के लिए बोल रहा था। नित्या ने पूरी बात बोलने के बाद मिस्टर शेरगिल को देखा, जिनके चेहरे पर सख्त भाव मौजूद थे। तुम्हें जो कहना था तुमने कह लिया, अब मानव के लिए सफाइयां देना बंद करो और अपने रूम में जाओ। मिस्टर शेरगिल का तलखी भरा अंदाज देखकर नित्या चौंक गई, साथ ही थोड़ा घबरा भी गई। डैड, मैं सफाइयां नहीं दे रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। मानव की कोई गलती नहीं है, वो सच में काफी देर से मुझे समझा रहा था कि लेट हो रहा है, मुझे घर चलना चाहिए। मैं ही नहीं मान रही थी, मैंने इस बात पर उससे लड़ाई भी कर ली थी। नित्या, मैंने कहा रूम में जाओ, मिस्टर शेरगिल ने सख्ती से कहा और आंखों से घूरते हुए वार्निंग दी। नित्या का चेहरा ही उतर गया, वो मुंह लटकाए मायूसी वहां से जाने लगी। वो इतने धीरे धीरे चल रही थी कि उसकी स्पीड के आगे कछुआ भी उससे आगे निकल जाए। मिस्टर शेरगिल अब भी वहीं खड़े नित्या को देख रहे थे। नहीं कहूंगा कुछ तुम्हारे मानव को, जाओ जाकर आराम करो। पीछे से मिस्टर शेरगिल की आवाज आई और नित्या की आंखों की पुतलियां अविश्वास से फैल गईं। वो चलते चलते रुक गई, झटके से पड़ती। सच डैड, आप मानव को कुछ नहीं कहेंगे? जब गलती मेरी अपनी बेटी की है, वही वापस अपने घर नहीं आना चाहती थी, तो उसे कुछ कैसे कर सकता हूं मैं? वो भी तब जब मैं जानता हूं कि अगर मैंने उसे कुछ भी कहा तो उसका असर सीधे तुम पर पड़ेगा। गुस्सा उस पर करूंगा और दुखी उदास तुम हो जाओगी। क्या पता उसे मेरी डांट से बचाने के लिए मेरे खिलाफ ही खड़ी हो जाओ, फिर उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
अंदाज आम सा था, लेकिन उनकी कहीं कहीं एक एक बात सच थी जो नित्या को ताने जैसे लगे। उसने निचले होंठ को बाहर निकाला और गालों को नाराजगी से फुला लिए। मानव अभी बेड पर बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगा। जैसे ही मानव ने उस नंबर को देखा, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन उभर आए। टू बी कंटिन्यूड।